Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Parantu, Bhagavan Ram ka jeevan dekhiye, जरा भी कहीं भी दोष दर्शन नहीं। माथा लगाकर, माथा मतलब केवल हाथ नहीं, अपने सर को चरणों में लगा करके माता पिता गुरु को प्रातः काल नमस्कार करते हैं। इससे भगवान राम छोटे हो गए कि बड़े हो गए बताओ? बंबई में चार एक साथ पड़ोसी हैं, एक का जो लड़का है ना और बहू, दोनों प्रातः काल उठकर सासु माँ और जो है ना अपने जो ससुर जी है, दोनों को माथा लगाकर बहुत नमस्कार करे, बेटा भी करे पोता भी करे और पड़ोस में दूसरे का न करे, तो किसकी प्रशंसा तारीफ होगी? ईमानदारी से बताना, जो प्रणाम करता ना सही बोलेंगे, देखो कितना अच्छा लड़का है। कलयुग में साक्षात श्रवण कुमार है, लोग बोलेंगे ना कि घोर कलिकाल में इसका लड़का श्रवण कुमार के समान है, इसकी बहु साक्षात सती सावित्री सीता के समान है, बोलते हैं ना। और ना करे तो बोलेंगे बड़ा उदंड है, ये रावण के समान है, ऐसा खुद बोलते हैं लोग। तो देखो भगवान राम की संस्कृति है प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु के चरणों में नमस्कार करना, मतलब कि साक्षात उनके जीवन मातृ देवो भव है, पात्र पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इसका मतलब समझते हैं आप लोग ना, क्या अर्थ होता है मातृ भव का? मतलब माता देवता है, ऐसा अर्थ बताएंगे, मुझे भी पता था इसलिए हमने कहा इसका समास करना बहुगुरी, तब सही अर्थ निकलेगा। मातृ देवो यस्य स मातृ देव स भव, ऐसा समास है, बहुगुरी समास करना, नहीं तो उल्टा अर्थ लग जाएगा। मतलब मातृ माता देवता के समान है, जिसके दृष्टि में उसका नाम मातृ देवो भव है, राम के समान। राम कैसे? मातृ देवो भव हैं, पितृ देवो भव हैं, आचार देवो भव हैं, उनकी जीवन माता पिता साक्षात चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, वो हाड़ मां चाम का पुतला नहीं समझते हैं। भाई जब हम पत्थर में ऐसी भावना करते हैं कि भगवान मानकर पूजा करते हैं, करते कि नहीं मंदा इस बताओ? है तो पत्थर शुद्ध, पर शुद्ध पत्थर को भी भावना से भगवान मानकर पूजा करके भगवत्ता को उपलब्ध हो जाते हैं, और मरने के बाद भी नाम लेते कि बड़ा भारी भगत जी थे, बोलते ना। तो फिर साक्षात जो चलते फिरते हैं, जिनमें साक्षात चेतन की अभिव्यक्ति है, ऐसे माता को पिता को गुरु को यदि हमने अभिवादन किया तो समझो कि सबसे उत्तम जो आपका आत्मकोटि की साधना है उसको हमने प्रारंभ कर दिया। इसीलिए कहा का विवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन। आजकल तो सुनने में आता है वृद्ध को क्या बोलते, वो हिंदी में बोलते हैं कचरा डस्टबिन बोलते हैं ना, ऐसी भाषा का प्रयोग होने लगा इस देश में, दुर्भाग्य। जहां पर कि साक्षात उनको माता पिता को भगवान भगवान शंकर पार्वती का रूप दिया गया है। देखो यहां से यदि आप साधना प्रारंभ करते हैं, कहां से? प्रातः काल उठते ही माता पिता गुरु को साक्षात परमात्मा रूप मानेंगे तो क्या मिलेगा? आयु विद्या यश और बल, बल का दोनों अर्थ है। ब्रह्म विद्या जन्य बल भी अर्थ होता है, शारीरिक बल भी होता है। शारीरिक बल तो अन्न जल के खाने पीने से होता है, और ब्रह्म विद्या जन्य बल बोलते हैं ज्ञानोपलब्धि। ये दोनों उपलब्ध होते हैं किसको? जिसके जीवन में अभिवादन है, माता पिता गुरुजनों की में सेवा श्रद्धा भाव है, तो आत्मकोटि है। इसके विपरीत क्या, अनात्म कोटि, दो ही चीज है ना। वेदांत जगत में केवल दो ही चीज है, आत्मा अनात्मा। आत्मा को ही हम परमात्मा भगवान शब्द से पुकारते हैं और जगत को संसार अनात्मा शब्द से कहते हैं। तो यहां पर नचिकेता के सामने दोनों चीजें हैं, आत्मा और अनात्मा दोनों चीजें हैं ना। परंतु नचिकेता ने अनात्मा का चुनाव नहीं किया। यमाचार ने बड़ा भारी प्रलोभन दिया कि जो है ना तुम लंबी आयु ले लो, तुम्हें राजा बना देते हैं, अप्सराओं को प्रदान करते, बहुत सारी चीजें दिया, परंतु नचिकेता ने स्वीकार नहीं किया। नचिकेता ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि जब तक आप याम में पद पर है ना, तब तक तो मौत आ नहीं सकती, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात हो गई, बिना आपके आज्ञा के हम कोई आ नहीं सकता कालदूत, ये तो लंबी आयु हमें चाहिए नहीं। और संसार के जो पदार्थ है ना, ये क्या जरयंती तेज इंद्रियाणाम, संसार के संसाधन इंद्रियों के तेज को शक्ति को क्षीण करते हैं, तो यह भी नहीं चाहिए। इसलिए हमें तो आप आत्मज्ञान प्रदान करो। तो नचिकेता शब्द का जिज्ञासु नहीं करना, क्या हो गया, न चिनोति केतनादिकम, यह स नचिकेता। जो संसार रूपी बाजार में आने के बाद दूसरी कोई चीज चुनता नहीं, जिस प्रकार कोई कन्या होती ना, पुराने जमाने में जब विवाह होता था तो कन्या के सामने बहुत सारे वर खड़े होते थे, राजकुमार, जिसके गले में माला डाल देना वो क्या हो गया, अब पति परमेश्वर हो गया। माला डालने के पहले कोई भी संबंध नहीं। ऐसे ही संसार सागर में आपके हाथ में बरमाला है, वो बरमाला किसके गले में डालेंगे, परमेश्वर के गले में, आत्मा के गले में। जब आप आत्मा का चुनाव कर लेंगे तो फिर आत्मा की जिम्मेदारी हो जाएगी आपकी योग क्षेम वहन करने की। आप सभी जानते हैं कि भगवान ने गीता में बार बार प्रतिज्ञा किया है, दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में कोई भी कंपनी, कोई भी सरकारें ऐसी प्रतिज्ञा कर नहीं सकती, और कर ले तो वहन नहीं कर पाएगी। पर भगवान ने बार बार कहा, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान योग क्षेम का स्वयं वहन करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग के सामने हम लोग हैं। हम लोग जब घर से आए थे, जितने हजारों संत हैं सब छोड़ छाड़ के आए, पूरी संपत्ति प्रॉपर्टी जो भी कुछ, पर यहां पर आने के बाद कुछ कमी नहीं, सब कुछ उपलब्ध है कि नहीं। तो जो भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता, अनन्य कार्य जानते ना, अनन्या चिंतन, तो अनन्य मतलब कि न विद्यते अन्यो यत्र, जहां पर अन्य चीज है ही नहीं। जिस प्रकार किसी को भूत लग जाए, जब भूत लग जाता है तो भूत वाले को क्या दिखाई पड़ता है, भूत ही भूत दिखाई पड़ता है। भगवान भाष्यकार ने अभी जो गीता का स्वाध्याय चल रहा उसमें प्रसंग आता है कि किसी को पीलिया रोग हो जाए, तो जिसको पीलिया फीवर बोलते ना बुखार आप, तो जिसको ऐसा फीवर बुखार आ जाए इसमें पीलिया हो जाता है, तो सब कुछ पीला पीला दिखाई पड़ता, ये मीठा भी कड़वा लगता है। ऐसे ही आपके दृष्टि में सर्वत्र भगवत दर्शन, भगवत वृत्ति हो, सभी पदार्थों में नाम रूप को छोड़कर यदि आप भगवत दर्शन करते हैं तो समझिए कि आपने आत्मा कवरण कर लिया। इसी बात को अथर्ववेदीय सावश उपनिषद में कहा गया है कि ईशावाश्रमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा, मा गृद्ध कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम्, सब परमात्मा से व्याप्त है। या शुद्ध अर्थ करें तो परमात्मा में सब अध्यस्त है। जो भी संसार है ना, नाम रूपात्मक संसार, सब परमात्मा में अध्यस्त है। अब तेन त्यक्तेन शब्द अंतिम में साधन कोटि का है। प्रथम चरण से साध्य कोटि का स्वरूप बतलाया, द्वितीय चरण में साधन कोटि कैसे प्राप्त करेंगे उसको। का तेन त्यक्तेन, तेन काटे नाम रूपाभ्याम, नाम रूप को त्यागते हुए। ये संसार केवल नाम रूपात्मक ही है। नाम रूप के असलियत को, सच्चाई को समझ लेना तो जीव शिव रूप हो जाएगा। शिव तो है ही, नाम रूप को पकड़ने के कारण से आप जीव भाव में आ गए। जैसे बंदर है, स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, उछल कूद कर सकता है, परंतु वो अपने हाथ से वो चना गुड़ पकड़ लिया ना, एक हाथ में चना दूसरे में गुड़, अब चिचियाता है, इतने मदारी याद क्या करता, पकड़ लेता है और सोने के पिंजरे में डाल देता है। वही हाथ लत हम लोगों की, हम लोग अपने हाथ से नाम रूप को पकड़ लिए, अब पकड़ करके बंदर की तरह बंधन में पड़ गए। बंदर बंधन में तब तक नहीं पड़ता जब तक वो चने गुड़ को पकड़ता नहीं। हम लोग भी बिल्कुल वैसा ही करते, नाम रूप को पकड़ लेते हैं, फिर बंदर की तरह से हम लोग परतंत्र हो जाते, फिर मदारी वो डंडा ही मारता, नचाता भी कमाता भी, ऐसे होता संसार में। तो देखो, वास्तव में आपको स्वरूप को समझना है तो नाम रूप को त्याग करके, फिर अंत में कहा मां गृध कस्वी धनम, ये जो धन है ना, ये धन कभी किसी का हुआ नहीं। इसलिए गृध मतलब गिध की दृष्टि समझ लो, परम पूज्य महाराज श्री बड़ी सरल भाषा में बताते ना बार बार, गृध मतलब गिध की दृष्टि। हालांकि गिध शब्द का अर्थ है आकांक्षा, चाह, चाह नहीं करना, ये शुद्ध अर्थ है। परंतु व्यवहारिक भाषा में से गिद्ध उड़ान ऊंची भरता है, उसकी नजर कहां पर होती, मांस के लोथड़े पर। ऐसे ही हम लोग अपने जीवन में धन को ऐसा पकड़ लेते ना कि आत्मा को विस्मित हो जाते। तो कह रहे कि धन की कभी आसक्ति मत करो, ये जो है ना साधन बताया। तो देखो, नचिकेता ने क्या वर्ण किया, आत्मा का वर्ण किया, चुनाव किया। नचिकेता ने आत्मा का चुनाव किया तो उसके जीवन में क्या कमी रह गई, कुछ कमी रही, सब कुछ उपलब्ध हो गया। पर नचिकेता आत्मज्ञान के पहले यमाचार से क्या मांगता है सभी को पता है। यमाचार बोले तीन वरदान मांग लो, तो सबसे पहले क्या मांगा, पितृ संतोष। पिता ने कहा कि जा, तुझे मौत को दान देता हूं, मतलब मौत के मुख में, पर कितना अच्छा सुपुत्र। उसने कहा कि सबसे पहले पिता को संतोष हो, पिता का कल्याण हो, शांता सुमना यथास्यात, कहा शांत हो, प्रसन्न हो, आनंद हो। ये नहीं कहा कि हमारे बाप ने घर से निकाल दिया, उसको जरा ठीक करो या न्याय दिलाओ, ऐसा नहीं कहा। आजकल का बेटा होता ना सीधा बोलता कि हमारे पिता ने घर से निकाला, जरा न्याय होना चाहिए। पैसा कुछ नहीं, सीधा बोला कि पिताजी संतुष्ट हो, आनंदित हो और शांत शांति उपलब्ध हो जाए। दूसरे वरदान में सामान्य जनता के लिए वरदान मांगा, वह क्या थी, अग्नि विद्या। जिस अग्नि विद्या को, उपासना को जानने के बाद मनुष्य को प्राप्त करे, ऐसी विद्या मांगी। इसके बाद तीसरे वरदान में आत्म विद्या मांगा, आत्म कल्याण, कि हमारा कैसे कल्याण हो। तो नचिकेता शब्द में सब कुछ आ जाता है। यदि हम ईमानदारी से नचिकेता बन जाएं, तो यम को भी हमें आत्मज्ञान का उपदेश करना ही पड़ेगा। यमराज जो मौत का देवता है ना, देखो यमाचार बोलते मौत के देवता को, और ब्रह्म विद्या का मतलब क्या, अमर है। दोनों में कितना विरोध, एक तरफ शुद्ध भाषा मौत और आत्म विद्या को अमौत हो गया, अमर हो गया ना। तो जीवन में यदि हमने परमात्मा का वरण कर लिया, चुनाव कर लिया, तो मौत भी अमरता प्रदान करेगी। कितनी बड़ी विशेषता है। जंगल में एक जो है ना गरीब घर की लड़की थी, प्रातः काल घने जंगल में जाए, लकड़ी काटे, सुखाए, बांधे, बाजार में बेचकर आए। ऐसे करते करते उसके 20 वर्ष बीत गए। एक दिन उसके मन में पति की चाह हुई, जंगल में भगवान शंकर की पिंडी बनाकर पूजा करती, प्रार्थना करती, पतिमे देही परमेश्वर, हे पति परमेश्वर मुझे प्राप्त हो। सौभाग्य से उसी जंगल में राजकुमार घूमते घूमते आया, राजकुमार को देखी, देखने के बाद राजकुमार ने भी देखा। जैसे ही कन्या ने राजकुमार का वरण कर लिया, उधर राजकुमार ने भी उसका वरण किया। जब घर में लाया उस जंगल की, तो जंगली कन्या को लाने के बाद अब रानी रूप में परिणत हो गई। जब उस कन्या ने राजकुमार का चुनाव कर लिया, वरण कर लिया, वरमाला डाल दिया, अब राजमहल में आ गई। राजमहल में आने के बाद अब वो फिर से पूर्वत जंगल में जाएगी लकड़ी काटने की, नहीं और जाएगी कि बदनामी किसकी होगी, राजकुमार की कि लड़के की, किसकी होगी। जब राजकुमार के साथ शादी ब्याह सब कुछ हो गया, राजमहल में रहने लगी, कदाचित पूर्व के समान कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाए लकड़ी काटने, तो उसके मतलब पीहर की बदनामी होगी कि राजघराने की, राजघराने की पक्की बात ना। ऐसी हम जीवन में यदि संसार रूपी जंगल में रह रहे, इस संसार रूपी जंगल में यदि हमने परमात्मा का वरण कर लिया, चुनाव कर लिया, तो फिर परमात्मा की जिम्मेदारी योगक्षेम वहन करने की, फिर परमात्मा हमारी लाज रखते हैं, पर मनुष्य को भरोसा नहीं होता। मनुष्य परमार्थ के मार्ग में क्यों नहीं लगता, एक ही कारण है, योगक्षेम की चिंता है ना। सोचता है कि मैं परमार्थ मार्ग में लगूंगा तो योगक्षेम कैसे चलेगा, तो इसका उत्तर भगवान ने गीता में दे दिया, योगक्षेमम वहाम्यहम, योगक्षेम का वहन करते, बशर्ते हम ईमानदारी से परमात्मा के चिंतन में लग जाएं। देखो परमात्मा के चिंतन के लिए कुछ चाहिए नहीं, बल्कि कुछ चाहिए का विसर्जन करना है। जिस प्रकार सुषुप्ति में जब आप जाते हैं तो आप क्या क्या लेकर जाते हैं यहां से, विचार करो, सभी वहां से आए हैं ना। चीमन भाई तो बहुत सुषुप्ति में होकर आए हैं, लेट पहुंचे, तो वहां क्या क्या लेकर गए थे बताओ। गठरी मोटी जो ले गए उसमें सोना चांदी, चार जोड़ी कपड़े थे, क्या क्या थे, कुछ भी नहीं। सुषुप्ति में जब आप जाते हैं तो न इंद्रियां होती हैं, न संसाधन होते हैं, न मकान दुकान माल, कुछ नहीं होता है। कुछ होगा तो सुषुप्ति आएगी नहीं, अनिद्रा मतलब की होगी। तो आप जब जाते हैं तो कुछ नहीं करते, बल्कि सब कुछ छोड़ देते हैं, विसर्जन कर देते हैं, और वहां 8 घंटे तक परम आनंद को उपलब्ध करते हैं। न संसाधन है, न धन है, न दौलत है, न सगे संबंधी बंधु बांधव, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर कुछ भी न होने पर भी जब लौट के आते हैं तो क्या बोलती, परम आनंद में था, बड़ा मजा आया, बोलते हैं कि नहीं। ऐसे यहां पर है, यहां पर कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए है ना उसी को हटाना है। तो आप परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। पर होता क्या है कि परमात्मा के प्राप्ति के लिए चलते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि भाई जब वहां चल रहे हैं तो फिर इधर का काम बिगड़ जाएगा। जब आठ आठ घंटे सोते हैं तो संसार के कोई कारोबार बिगड़ते नहीं, किसी का बिगड़ा है, बल्कि नहीं सोएंगे तो बिगड़ जाएगा। चार घंटा छह घंटा सोते हैं तो सोने के बाद दिमाग हल्का ताजा हो गया, जरा शक्ति स्फूर्ति आ गई, होता है कि नहीं? ऐसे ही जब आप प्रातः काल सायंकाल जब भगवान के स्मरण करके जब आप कोई कारोबार करेंगे ना तो बढ़िया होगा, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी पढ़ता है, अब पढ़ने के बाद जब थक गया तो सो जाता है, सोने के बाद जब उठता है ना तो पिछले दिन का भूलता नहीं, बल्कि और ताजगी से शक्ति से उसमें लग जाता है। तो जैसे कांटे से कांटे को निकालते हैं ना, आप वेदांतियों के मन में शंका होगा कि भाई परमात्मा नाम रूप से परे है, होगा कि नहीं? नाम रूप से रहित है, शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण निराकार है, सच्चिदानंद है, इंद्रियातीत है, मायातीत है। जब इस प्रकार से है तो परमात्मा को हम कैसे जाने, कैसे पाए? इंद्रियों का तो विषय बन नहीं सकता है। तो देखो एक न्याय है, कंटके नैव कंटकम, कांटा से कांटा निकालते हैं ना, तो नाम रूप के कारण से आप परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। नाम रूप का आवरण हमारी आंखों पर आ गया, इसलिए परमात्मा को पहचान नहीं पाते। दुर्योधन है, अब दुर्योधन के सामने नाम क्या है? वासुदेव। आकार क्या? वो टेढ़ी टांग वाला कहता था श्याम सुंदर ने, ये टेढ़ी टांग वाला सबसे टेढ़ा है। दुर्योधन बार बार खिसिया कर दुशासन जी कहता सब ये काम बिगाड़ता है। तो देखो दुर्योधन के दृष्टि में क्या है, एक रूप है टेढ़ी टांग वाला, वो यदु कुल का छोरा है, अहिर का छोरा, ऐसा बोलता है। तो नाम रूप इतना दुराग्रह हो गया कि दुर्योधन सामने के परमात्मा को पहचान नहीं पाया। परंतु अर्जुन ने कभी यह नहीं समझा कि ये यदु कुल यदु वंशी अहिर के छोरा है, वसुदेव के छोरा है, क्या समझे? शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा ही है, ये तो नाम रूप का आवरण है, वो भी हमारे लिए धारण किए हैं। तो वेद कहता है कि तो निर्गुण ब्रह्म है ना, निष्कलश शरीर न उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। जो अद्वितीय परमात्मा है, जो निष्कल निर्गुण है, वही उपासकों के लिए उपासका नाम ब्रह्मणो रूप कल्पना। राम रूप में आ गए, श्याम रूप में आ गए, शिव रूप में आ गए। जैसे कांटा से कांटा निकालते हैं ना, ऐसी परमात्मा नाम रूप की उपाधि को विलय करने के लिए, ये नाम रूप के कांटा को जो निकालने के लिए, जो हमारे हृदय में एक नाम रूप है ना कि हमारा लाडला है, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा धन, ये हमारा सब जगह लगा हुआ है। तो हमारे नाम रूप के कांटे को दिल से निकालने के लिए उस परमात्मा ने सुंदर नाम रूप का चादर उड़ के आ गया, कन्हैया बन के आ गया, श्याम बनकर आ गया, राम बनकर आ गया। अब आप इस नाम रूप से सभी नाम रूप के कांटे को हटा देंगे, फिर शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। समझे कि नहीं? तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वह कोई दूर नहीं है, वह जो परमात्मा है वह आपके हृदयाकाश में मौजूद है। उसको पाने के लिए आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आंख बनकर यदि आप हृदयाकाश में उसका चिंतन करें तो तत्काल प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार दूध में घृत छिपा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु घृत को पाने के लिए हमें सबसे पहले गर्म करना पड़ेगा। तपाने के बाद थोड़ा ठंडा करके जामुन डाल के दही जमाकर जब मथानी घुमाएंगे तब जाकर प्रकट होगा। ऐसे ही हमें यहां पर विवेक के मथानी से मथना पड़ेगा। आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, कणकण में मौजूद है। कहते हैं ना, जो ब्रह्म है कणकण में, क्षण क्षण में, जनजन में, परम पूज्य ये महाराज शिव शस्त्री के शब्द है। हमने प्रवचन में कई बार सुना इन शब्द को, है ना मधुसूदन भाई। कलयुग के उन्हें अभिनव व्यास लोग कहते हैं, महात्मा लोग। सही कह रहा हूं, ईमानदारी से जितने विद्वान हुए ना उनकी भाषा ऐसी कि आम पब्लिक समझ नहीं सकती, पर परम पूज्य महाराज श्री की जो प्रवचन शैली जो ग्रंथ है उसमें गोता लगाएं तो विद्वानों को ही मिलता है और बिल्कुल नासमझ से नासमझ कोई मिलेगा। अब जैसे उन्होंने कहा कितनी सरल भाषा में, कण कण में है, क्षण क्षण में है, जन जन है मौजूद, मतलब प्रत्येक क्षण में है। कई बार होता है ना, अभी माहौल ठीक नहीं, समय ठीक नहीं, ये बंबई देश ठीक नहीं, ये हिमालय में जाएंगे गंगा किनारे वहां बैठकर भगवान मिल जाएंगे, ऐसा मैं भी सोचा करता था, ऐसा है नहीं। वो तो प्रत्येक क्षण में है, आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, और प्रत्येक जनजन मतलब प्रत्येक प्राणी में है, और प्रत्येक कणकण मतलब प्रत्येक देश में है। ऐसा नहीं कि हिमालय की कंदरा मिलेगा और मुंबई में नहीं मिलेगा, वो तो सभी जगह है। बशर्ते क्या करना, तो हमें अंतर्मुख होकर केवल उसको समझने का प्रयास करना है। अब कब करना है ये तो आपको ऊपर छोड़ दिया हमने। भगवती श्रुति कहती है यह चेत अवेदित सत्यमस्ति, यदि आपने यहां पर समझ लिया तब तो सफल है। नो चेत अवेदित महति विनष्टि, और नहीं जाना तो क्या होगा, बहुत बड़ी क्षति होगी। क्षति मतलब 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसीलिए सावधान, अभी आपके पास बहुत समय है, ऐसा नहीं समझना है कि हम तो बूढ़े हो गए नहीं प्राप्त कर सकते। खटवांग ने आधे मुहूर्त में उस आत्मा का साक्षात्कार किया था, तो साक्षात्कार हमें भी हो सकता, बशर्ते हम सच्चे दिल से परमात्मा को पुकारे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।